جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے آیتیں تو پڑھ لی ہیں اور لفظوں کو بھی کسی حد تک سمجھ لیا. اب ایک دو باتیں جو خاص طور میں ان آخری آیتوں پہ توجہ آتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اسلام تصویر سازی کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے, اور کیا پاسپورٹ پہ تصویر نہیں لگا سکتے, اور ایک اور کوشچن ہوتا ہے کہ کیمرے کی کھینچی ہوئی تصویر اور ہاتھ کی بنی ہوئی تصویر میں کوئی فرق ہے. تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا تصویر کی حرمت کی وجہ سمجھ لیجئے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح اسلام میں تصویر کا جو نظریہ ہے, اسی طرح کرسچینٹی اور جیوازم میں بھی تھا. آج جب تصویر کی بات کی جائے تو بعض نان مسلم بہت ہی آپ کو ہلکا جانتے ہیں, کہتے ہیں اچھا یہ کیسا اسلام ہے کہ جس میں اس تصویر کو اتنا بڑا ایشو بنایا جاتا ہے. تو ایک دو ریفرنسز آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس سے آپ اس کو سمجھ سکیں گے کہ پہلی کتابوں میں بھی تصویریں منع تھیں. باب خروج ہے, آیت نمبر 4 ہے تورات کی. تو اپنے لیے کوئی تراشی بھی مورت نہ بنانا, نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. اسی طرح احبار کتاب ہے باب 26, تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ تراشی بھی مورت یا لاٹ کر کے اپنے لیے کھڑی کرنا, اور نہ ہی اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو. اسی طرح کتاب ہے استثناء باب ہے 4, آیت نمبر 16 اور 18 تورات کی. تا نہ کہ ہو تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت میں کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی شبیہ کسی مت یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے یا زمین میں رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہو. اسی طرح ان کی کتاب استثناء باب 27 آیت 15 میں آتا ہے, لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کر دے. اب یہ ساری باتیں پڑھنے سے پہلی بات تو آپ یہ لکھ لیجئے اس وقت اپنے لیے کہ جو حکم اسلام کا تصویر, یہی تورات اور انجیل میں بھی تھا. لیکن آج ان لوگوں نے اپنی کتابوں پہ عمل جب چھوڑا تو آج ایسے لگتا ہے کہ اسلام ہی سب سے زیادہ بیکورڈ ریلیجن ہے جو ان ایشوز کو چھیڑتا ہے, اور دوسری طرف ایسی بات نہیں ہے. یہ چند ریفرنسز میں نے اسی لیے بھی پڑھ کر سنائے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس میں حقیقت کیا تھی. دوسری بات دیکھیے کہ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے, تماثیل, تمثال کی جمع. تمثال عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی قدرتی شے کے مشابہ ہو, جس کو آپ کہتے ہیں نا ہو بہو سملر, بالکل ویسی ہو. قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی انسان ہو یا حیوان ہو, کوئی درخت ہو یا پھول ہو, یا دریا یا کوئی دوسری بے جان چیز. لسان العرب عربی کی کتاب ہے, اس میں آتا ہے التمثال اسم للشيء المصنوع مشبہ بخلق من خلق اللہ. ٹھیک ہے, تو تمثال نام ہے ہر اس مصنوعی چیز کا جو اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کے مانند بنائی جائے. تو گویا کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تمثال کا لفظ جاندار اور بے جان دونوں پہ تھا. پہلی بات ہم سمجھیں گے کہ حضرت سلیمان کے ناطے سے جو یہ بات کہا گئی کہ وہ بناتے تھے ان کے لیے ما یشاء من محاریب و تماثیل, تو پھر ہم اس میں کہتے ہیں کہ وہ غیر جاندار چیزوں کی تصویریں تھیں. آسان سی بات ہے. بعض لوگوں نے یہ الزام لگایا ان پر, حضرت سلیمان پر, کہ جو تصویریں تھیں وہ نبیوں کی تھیں, ملائکہ کی تھیں. یہ سب غلط ہے. ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اگر تصویر حرام تھی تو انہوں نے ایسی تصویریں نہیں بنائی ہوں گی. ٹھیک ہے, باقی رہے گی بات کہ آج کے دور میں کیا کریں. کوشچن سمجھ لیجئے, تصویر کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے. دنیا میں شرک پھیلنے کی بہت بڑی وجہ تصویر اور مجسمہ سازی ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ قوم نوح سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے بھی شرک ہیں نا, یا شرک مشرکانہ مذاہب ہیں, یا بگڑے ہوئے عقائد ہیں آج مسلمانوں کے, اس میں تصویر کا بڑا گہرا تعلق ہے. تصویر شیخ, قبلہ و کعبہ, ان کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑنا, ان کو دیکھ لینا گویا کہ کعبے کو دیکھنے کے برابر کر دینا. اسلام جو چیز چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تصویر کی عزت نہ کی جائے. لکھئے, تصویر پوجی نہ جائے, تصویر کو اس طرح سجا کے لٹکا کے نہ رکھا جائے کہ اس کی عزت افزائی ہو. اب وہ لوگ جو گھروں میں تصویریں لگاتے لٹکاتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ آخر وہ کیوں لگاتے ہیں؟ عزت ہی تو ہے, خوبصورتی ہے, اور بعض دفعہ ان چیزوں سے اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ پوچھنے کی حد تک ایسی چیزوں پہ. ایسی چیزیں تو قطعی جائز نہیں ہیں. باقی رہ گئی بات کہ تصویریں جو पासपोर्ट्स पे लगती हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हैं, या बगैर किसी बहुत क्लोज सब के आप कहीं दूर किसी की कोई चीज़ को देखते हैं, उसके लिए फिर इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है कि क्यों खिंचवा रहे हो। एक है ज़रूरत, इट्स ओके, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी और इसके बगैर गुजारा नहीं है तो आप खिंचवा लीजिए। हालांकि आज के दौर में लोगों ने बता दिया कि तस्वीर से भी मुमासलत नहीं होती, तस्वीरें भी लोग शक्ल बदल लेते हैं। असल जो दो चीज़ें हमारे जिस्म में, एक हमारे ये फिंगरप्रिंट्स और एक हमारी आंख के अंदर का रेटिना, ये दो जो हैं ये बार कोड्स हैं। जैसे बार कोड फेरे तो उस चीज़ की कीमत आ जाती है ना, ये दो लोगों के कभी नहीं मिलते। और आज जदीद दौर में इन्हीं दो चीज़ों को स्कैन करते हैं। अगर आपने सफ़र किया हो कुछ मुल्कों में, ख़ास तौर पे जो अरब कंट्रीज़ हैं, तो वो ख़ास तौर पे आपकी आँख की पुतली की तस्वीर लेते हैं। पहले समझ नहीं आती थी, और वो इतना टाइम लगाते हैं आपकी तस्वीर लेते हुए, इधर रुके इधर खड़े हों कि उनको एक खास एंगल से लेनी है। साइंस ने बता दिया कि वो तस्वीर जब नेट में डाल के देखते हैं तो वो उसके अंदर जो लाइनें होती हैं ना, वो दो लोगों के आपस में नहीं मिलती, कुदरत के बार कोड्स हैं। ठीक है, इस हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से अपनी तस्वीरें खींच रहे हैं कि पहले लोग घर की दीवारों पर लगाते थे, अब आप नेट की दीवारों पर लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, वाइपर की विंडो पे लगाते हैं, मुझे समझ नहीं आती बेचना के खरीदना है, पसंद करना है, क्या करना है। कई लोग आज देखिए, ये बहुत बड़ी कवाहत है, इसको नोट कीजिएगा, कि हमारे सबके पास पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कि आप कह सकते हैं कि आपके फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों और महरमों के हैं। और अगर महरम यानी आपके मामू के पास आपका, या आपके मामू के पास आपका नंबर है, तो क्या मामू का फ़ोन मामू के बेटे नहीं देखते होंगे, या खाला के बच्चे नहीं देखते होंगे, या फुफ्फो के बच्चे नहीं देखते होंगे। आज इस तरीके से तस्वीर को हमने आम कर दिया, कैसे लगता है कि अब इसके बारे में बात भी ना करो। शादी की तस्वीरें झूमते हुए घूमते हुए और बिल्कुल हीरोइनों वाले स्टाइल बना के करना, अब तो लोग इस पे क्वेश्चन भी नहीं करना चाहते। पहले वो कहते हैं ना कि एक्सेप्टेड था, अब एक्सपेक्टेड हो गया। इस्लाम के इसके बारे में क्या नुक्ता नजर है? हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा ने हबशा में कनीसा देखा था, कनीसा समझते हैं चर्च, जिसमें तस्वीरें थी। इसका जिक्र उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आपने फरमाया, इन लोगों का हाल यह था कि जब इनमें से कोई साले शख्स होता तो इसके मरने के बाद वो उसकी कब्र पर एक इबादत का बनाते और इसमें तस्वीरें बना लिया करते। ये लोग क्यामत के रोज अल्लाह के नजदीक बदतरीन मखलूक करार पाएंगे। ये निसाई की रिवायत है किताबुल मसाजिद में। अगली रिवायत है अबू जहैफा की, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, यानी आपने लानल मुसव्विर, आपने लानत फरमाई मुसव्विर पर। यह बुखारी की रिवायत है। मुसव्विर यानी जो अल्लाह के अल मुसव्विर होने की तशबीह करता है। अब आप देख लीजिए, जो पोर्ट्रेट बनाना और तस्वीरें हाथों से खींचना बनाना, वो इसमें आ जाता है। अबू जुरा कहते हैं कि एक मरतबा में अबू हुरैरा के साथ एक मकान में दाखिल हुआ तो देखा कि मकान के ऊपर एक मुसव्वर तस्वीरें बना रहा है, जिसको पेंटर्स कह लें, पेंटिंग। इस पर हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला फरमाता है, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो मेरी तख्लीक की मानी तख्लीक करे और ये लोग एक दाना या एक चुंडी तो बनाकर दिखाएं। यानी नापसंदीदा है जानदार चीजों की पेंटिंग बनाना। फिर इसी तरह अबू मोहम्मद हसली हजरत अली से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, तुम लोगों में से कौन है जो जाकर मदीना में कोई बुत ना छोड़े जिसे तोड़ ना दे, और कोई कब्र ना छोड़े जिसे जमीन के बराबर ना कर दे, और कोई तस्वीर ना छोड़े जिसे मिटा ना दे। एक शख्स ने अर्ज किया कि मैं इसके लिए हाजिर हूँ, चुनाचे वो गया, मगर अहले मदीना के खौफ से ये काम किए बगैर पलट आया। बड़ा मुश्किल होता है लोगों के बुत तोड़ना, रिएक्शन बहुत होता है। खैर, फिर हजरत अली ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। आपने फरमाया, अच्छा तुम जाओ। हजरत अली गए, वापस आकर उन्होंने अर्ज किया, मैंने कोई बुत नहीं छोड़ा जिसे तोड़ ना दिया हो, कोई कब्र नहीं छोड़ी जिसे जमीन के बराबर ना किया हो, क्योंकि आप कहते हैं इस्लाम कब्रों को जमीन के बराबर करना पसंद करता है। खैर, कहते हैं कि और कोई तस्वीर नहीं छोड़ी जिसे मिटा ना दिया हो। चौक और कोयले से इस तरह की तस्वीरें होती थी जिनको लोग फिर मिटा देते थे। कहते हैं, ये सब मैंने मिटा दिया। इस पर आपने फरमाया, अब अगर किसी शख्स ने इन चीज़ों में से कोई चीज़ बनाई तो इसने उस तालीम से कुफर किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता है। इस रिवायत को पढ़ते ही मुझे बचपन में वो बोर्ड्स देखे हुए याद आ गए जो हम स्कूल कॉलेज जाते हुए टांगे में रास्तों में से गुजरते थे ना, तो सड़कों के किनारों पर फिल्मों के इश्तहारात के बोर्ड होते थे, हाथ से कच्चे पानी से जो भी बनी बड़ी बड़ी तस्वीरें हीरोइनों की, और वो सब हाथ की होती थी। पोस्टर सब बनते हैं, पहले लोग हाथों से बनाते थे, कहाँ जायज़ हो सकता है जिसमें आप इतनी बड़ी बड़ी हीरोइनों की तस्वीरें डाल दें। और इसी तरह आप देखिए, आज उसकी जगह बिल बोर्ड्स पर बड़ी बड़ी 50-50 फुट लंबी तस्वीरें, आज एक औरत सामने आती है 5-6 फुट की, हो सकता है इतनी तवज्जो ना आए, उसी तस्वीर को आप 10-20 गुना बड़ा करके पूरी बिल्डिंग की छत से लेके ऊपर तक लगाते हैं, क्या आप कह सकते हैं वो तस्वीर जायज है, चाहे वो कैमरे की सही है? असल हुक्म समझ जाएंगे ना तो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं करेंगे कैमरे की है कि नहीं। इस्लाम तस्वीर की इज्जत नहीं चाहता। इस तरह बहुत सारी और रिवायात है जिसका टाइम नहीं है, लेकिन खुलासा बता देती हूँ। इब्ने अब्बास से रिवायत है, और जिस शख्स ने तस्वीर बनाई उसे अजाब दिया जाएगा और मजबूर किया जाएगा कि वो इसमें रूह फूंके और वो ना फूंक सकेगा। ये रिवायत जो है ये निसाई की भी है और तिर्मिजी की, बुखारी की। इसी तरह से साद बिन अबी अल हसन कहते हैं कि मैं इब्ने अब्बास के पास बैठा था, इतने में एक शख्स आया और उसने कहा कि अबू अब्बास, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने हाथ से रोजी कमाता है और मेरा रोजगार ये तस्वीरें बनाना है, यानी पेंटर था। आपने जवाब में कहा कि मैं तुमसे वही बात कहूंगा जो मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना। मैंने आपसे ये बात सुनी है कि जो शख्स तस्वीर बनाएगा अल्लाह उसे अजाब देगा और उसे ना छोड़ेगा जब तक वो इसमें रूह न फूंके और ना कभी रूह फूंक सकेगा। ये बात सुनकर वो शख्स, मतलब बहुत ही उसको तकलीफ हुई या दुख हुआ और इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। इस पर इब्ने अब्बास ने कहा, बंदे खुदा, अगर तुझे तस्वीर बनानी है तो इस दरख्त की बना या किसी ऐसी चीज की बना जिसमें रूह ना हो। ठीक है। फिर इसी तरह बुखारी की, मुस्लिम की रिवायत है हजरत इब्ने मसूद से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन अशद्द अन्नास अज़ाबन इंदल्लाह यौम अल-क़ियामति अल-मुसव्विरून, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के सख्त तरीन सजा पाने वाले मुसव्विर होंगे। इब्ने उमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा, जो लोग तस्वीरें बनाते हैं इनको क़यामत के रोज़ अजाब दिया जाएगा, इनसे कहा जाएगा जो कुछ तुमने बनाया उसे जिंदा करो। अब यहां से आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिलेगी। कहती हैं कि मैंने एक तकिया खरीदा जिसमें तस्वीरें बनी हुई थी, फिर अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और दरवाजे में ही खड़े हो गए, अंदर दाखिल ना हुए। मैंने अर्ज किया कि मैं खुदा से तौबा करती हूँ इस गुनाह पर कि जो मैंने किया। आपने फरमाया, ये तकिया कैसा है? मैंने अर्ज किया, ये इस गरज के लिए है कि आप यहाँ तशरीफ रखें और इस पर टेक लगाएं। फरमाया, इन तस्वीरें बनाने वालों को क्यामत के रोज अजाब दिया जाएगा, इनसे कहा जाएगा जो कुछ तुमने बनाया इसको जिंदा करो, और मलाइका यानी रहमत के फरिश्ते किसी ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीरें हो। ये भी देखिए बुखारी और मुस्लिम के दर्जे की रिवायात है, इब्ने माजा, मौता, निसाई, बहुत सारी चीजों में। हजरत आयशा कहती है, एक मरतबा अल्लाह के नबी मेरे यहाँ तशरीफ लाए, मैंने एक पर्दा लटका रखा था जिसमें तस्वीरें थी, आपके चेहरे का रंग बदल गया, फिर आपने इस पर्दे को लेकर फाड़ डाला और फरमाया, क्यामत के रोज सख्त तरीन अजाब इन लोगों को दिया जाएगा जो अल्लाह की तख्लीक की माने तख्लीक की कोशिश करते हैं। हजरत आयशा कहती है, एक दफ़ा आप सफर से वापस तशरीफ लाए, मैंने अपने दरवाजे पर एक पर्दा लटका रखा था जिसमें परदार घोड़ों की तस्वीरें थी, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया इसे उतार दो, तो और मैंने उसको उतार दिया। जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने इससे मना फरमाया कि घर में तस्वीर रखी जाए, इससे मना किया कि कोई शख्स तस्वीर बनाए। फिर मलाइका उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ तस्वीर हो और कुत्ता पला हुआ हो और जिस घर में तस्वीर हो। ये बुखारी की रिवायत है। इब्ने उमर कहते हैं, एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल ने आने का वादा किया मगर बहुत देर हुई तो ना आए, आपको परेशानी हुई, अब घर से निकले तो वो बाहर मिल गए। आपने उनसे शिकायत की तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे घर में नहीं जाते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। अब ये सारी रिवायात तो एकदम फ्लैटली हमें बताती हैं कि तस्वीर किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। ठीक है। अब दूसरे दर्जे की भी थोड़ी सी, दूसरा लेवल भी देख लीजिए, फिर इसको आप टैली कर लेंगे। अबू तलहा अंसारी की रिवायत है कि जिस कपड़े में तस्वीर कढ़ी हुई हो इसका पर्दा लटकाने की इजाज़त है। ये बुखारी की रिवायत है। हजरत आयशा की ये रिवायत के तस्वीरदार कपड़े को फाड़ कर जब उन्होंने गद्दा बना लिया तो अल्लाह के नबी ने उसे बिछाने से मना न किया। समझ रहे, पाँव में आएगा, नीचे आएगा, रुलने वाला हिसाब है ना, तो इट्स ओके, लेकिन उसको ताजीमन पर्दे की सूरत में आपने नहीं पसंद किया। ये मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह से ये जो रिवायत है सालिम बिन अब्दुल्ला की तस्वीर की ममानियत की, वो ये है कि नुमाया मुकाम पर नसब की गई ना हो और उस तस्वीर की ये जो फर्श पर बिछा दी गई हो इसकी रुख्सत है। मुस्नद अहमद की रिवायत है। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल करना कि पर्दे में नहीं हो लेकिन जमीन पे है, तो इससे लग रहा है कि तस्वीर की कराहत जो है वो समझती हैं और उसको पामाल किया जाए ताकि इसको ना हो। अब ये सारी चीज़ों को एक तरफ करें, अपने ऊपर रखें कि मेरे और आपके हम घर में या हमारी ज़िंदगी में तस्वीर कहाँ है। नंबर एक, ये सारी रिवायतें पढ़ते हुए मेरे जहन में लोगों के बच्चों के बेडरूम्स आ रहे थे। बच्चे का कमरा, उसका गद्दा, उसके कर्टन, उसके वॉलपेपर, ये तो मानी हुई बात है कि इसमें तस्वीरें होंगी। बहुत कम बच्चों के कपड़े हैं जो तस्वीरों से बगैर दिखते हो, और चूंकि हमने जिन दुकानों को चूज किया, जिन लोगों को रोल मॉडल बनाया, तो हमारा भी यही मसला है। हालांकि जब माएँ खुद कपड़े सीती थी या घरों में खुद बनाती थी, ये इशू नहीं था। कपड़ा खरीदना, वो नहीं ले लो तो वो ले लो, ठीक है। बहुत बचने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आप देखिए कि पूरे फेसेस के साथ तस्वीरें जो बनी होती हैं, फिर बच्चे जो कपड़े पहनते हैं सीने पे, अमूमन फ्रंट पे तस्वीर है। अब कहते हैं कि शैतान ने इस चीज़ को इंसानों के लिए आम किया कि दिल के करीब तस्वीर रहे। ये जो जहाँ तस्वीर रखते हैं ना, ये किस्म की अकीदत की अलामत है। अगर तस्वीर बच्चे की बनानी है, उसके पाँव में लगा दो, जूते के अंदर लगा दो, सॉक्स में लगा दो अगर बहुत शौक है, ताकि उसकी हुरमत हो। तो तस्वीर को इज्जत नहीं दे सकते। घर में आप अपनी शादियों की तस्वीरें लगाएं, बच्चों की तस्वीरें लगाएं, व्हाट डज इट मीन? मेरा अपना ज़ाती इस चीज़ पे पूरा शरह सदर है कि आज जो लोग अपनी खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाते हैं, देखिए एक है तस्वीर खिंचाना और एक है तस्वीर लगाना और उसका डिस्प्ले, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तस्वीर खींचने में कोई हर्ज नहीं, वो आप में नहीं खींचते, हमारी खुद ही खिंच जाती हैं। आजकल देखिए जहाँ कैमराज चलते हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, आप अपने बिल्डिंग में जाते हैं, लिखा होता है कि यहाँ जी सिक्योरिटी कैमरा है, अब वो कैमरे में आ गई या उन्होंने उसका स्केच बना दिया या वीडियो बना दी, सेम थिंग है। इस ओके अगर इस बिकॉज ऑफ सम रीज़न, लेकिन अब उसको सजा के और फेसबुक पे डाल देना और अपनी शादी की चीज़ें और वीडियो और मिनट मिनट की देना, आई डोंट फील कम्फर्टेबल। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक अपनी औकात ना पहचानने वाली बात है। मैंने फंक्शंस में अक्सर औरतों को देखा, औरतें औरतों की खींच रही हैं, जो भी है आप देखिए कि वीडियो बनती है, दुल्हन नकाब करती है, नहीं चले हिजाब करती होगी, मिसाल है, औरतों ने बना ली उसने, मिसाल है। अब आगे उसको क्या करेंगे आप? नंबर एक आप खुद देखेंगे, आपकी दोस्तें कहेंगी हमें दिखाओ, फिर आप थोड़े दिन बाद देखेंगे, आपके अंदर आएगी ना उजब, मैं कितनी प्यारी लगी थी, मैं कितनी सजी थी। जिस बंदे को अपनी औकात पता होगी ना, मेरे जिस्म में क्या है, अल्लाह की नज़र में मैं क्या हूँ, वो तो खुद को कुछ नहीं समझता। अच्छा लगा और बात है, खूबसूरती है, ठीक है, फिर जब आपकी तस्वीर इस तरह खींच सकती है, तो फिर मॉडल्स का क्या कसूर है? वो कहेंगे हमारी क्या है, सिर्फ रिसालों पर तो लगती है, क्या हुआ हमारी एक तस्वीर फिल्म में ही तो लगी है। गुनाह जो है ना दूर जाता है तो डायल्यूटेड होता जाता है। तो फत्तकुल्लाह मस्तता, तो ज़रूरत है खींच लीजिए, किसी ने खींच लिए तो उसको छुपा दीजिए, रख दीजिए, घर में दीवारों पे लगी हुई है, उसको आज जाकर उतार कर आप किसी बंद क्लोजेट में रख दें, जब आपका अपना दिल करे देखने को खोल के देख लें, डिस्प्ले पे लगा दें। अमूमन चीज़ें वो सजाई जाती हैं जो दिखानी हो, बेचनी हो, खरीदनी हो। अब घरों में नौकर भी होते हैं, घरों में मर्दों के ऑफिसेज के भी जो फ्रेंड्स हैं वो भी आते हैं, तो कितना मायूब बात है कि बहू बेटियों की तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई हैं। और एक आखिरी बात कहती हूँ, मेरा इसमें अपना ज़ाती कोई राय नहीं, मैंने आपको दोनों तरफ का बातें बता के एक बैलेंस चीज़ बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको एक ज़ाती सी बात ये कह देती हूँ कि जिस इंसान की नज़रें आखिरत पे लग जाती हैं ना, उसको दुनिया की ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं लुभाती। इससे पता चलता है कि हम खुद को क्या समझते हैं। हदीस में था कि दामा यूरीबिक इला माला यूरीबिक, उस चीज़ को छोड़ दो जो तुम्हें शक में डालती है और उसको ले लो कि जो शक से पाक करती है, तो फिर इसके बाद जिसका जो दिल चाहे, लेकिन कम से कम इसकी ये चीज़ तो मैं अपने सेलफोन में, आप मुझसे पूछे ना, यानी मेरे जैसा बंदा जिसको किसी की केयर नहीं है, और अब ये जो जब से हमारे माशाल्लाह ग्रुप बन गए हैं, क्लासेस व्हाट्सएप की बनी है, मेरे लिए हज़ारों लोगों की तस्वीरें इस एक फ़ोन में होंगी, किसी की व्हाट्सएप की विंडो पे बनी हुई है, तो किसी की वाइबर के आइकॉन पे है, तो किसी की स्काइप के ऊपर है, फिर हम बच्चों की लगा देते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी लगा देते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये बच्चों को हम एक अच्छी ट्रीट दे रहे हैं। अल्लाह पे नजरें रखें, जो चीज़ें आज यहाँ थोड़ी बहुत अगर हम पीछे कर देते हैं और जिसमें गुनाह का इस्तेमाल है, आप देखिए कोई गैर देख सकता है कि नहीं। मैंने किसी का कॉन्टैक्ट रखा हुआ था, मैं तो मेरे फ़ोन में एकदम कॉन्टैक्ट आया कि रिसेंटली ज्वाइन, अब जब मैंने देखा तो उस बंद की तस्वीर है, एकदम मुझे क्लिक करा, मैंने कहा कि इन्होंने आज वाइबर डाउनलोड किया है, मेरे पास इनका लोकल नंबर था, मैं कहाँ वो किसी मुल्क में कहाँ है, जब मेरे फ़ोन पे आई है तो क्वेश्चन ये कि इस बच्ची का फ़ोन नंबर और कई लोगों के पास होगा, तो क्या इसका मतलब कि आज जिस तरह मेरे सेल फोन पर ये बात आ गई है, तो सारी दुनिया में जहाँ भी इसके फ़ोन है, चलो उस मुल्क में जहाँ रहती है उधर के लोगों के पास भी आ गई। मुझे बड़ी हैरत हुई, मेरा ऐसे जैसे दिल, क्योंकि वो कुरान पढ़ी हुई बच्ची है। फिर मैंने उससे मैसेज किया, बात किया, तो उसने कहा कि, मैंने कहा आपने अपनी तस्वीर इस पर लगा दी, ऐसे क्या हुआ ना, पूछा मैंने ऐसे समझने की कोशिश की, कहती कुछ नहीं होता, ये तो अपने ही लोग हैं ना, मेरी नंबर जो है मेरी दोस्तों के पास है, तो मैंने कहा ये बताएं कि मेरा फ़ोन है, मेरे पे आ गया है, तो आपकी दोस्तों पे भी तो आएगा ना, तो आपकी दोस्त के माँ भाई बहन बाप कोई भी देख सकता है, किस किस से छुपाएंगे, मुश्किल हो गई ना। खैर उसको बात समझ आ गई, उसने उतार दी। بعض وہ قرآن پڑھے ہوئے دین کی خدمت کرنے لے داعی دین لیکچر درس دینے والوں کی میں نے دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں آتی کم از کم میں اس کو اپنے ذاتی طور پہ بالکل نہیں پسند کرتی. آج کل تو درسوں میں بھی جائیں جب بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں تو فکر لگ جاتی ہے کہ کہیں دور ادھر ادھر سے کوئی تصویریں نہ کھینچ رہا ہو, کیونکہ پہلے تو فلیش چلتا تھا آواز آتی تھی, اب تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو کبھی بھی کسی ایسے بندے کی تصویر آپ لوگوں کو نہیں کھینچنی چاہیے کہ جو نقاب کرتا ہے یا پڑھتا ہے. ایون ہم اپنی کلاسز میں کھینچتے ہیں, کب کبھی ضرورت ہے کوئی رپورٹ کی آپ کی یہاں بیٹھے کھینچے, کبھی آپ کا فیس نہیں آئے گا. ہمیشہ تصویر وہاں سے کھینچتے ہیں جو پیچھے ہے, ایک اپنی یادگاری کے لیے, کبھی ہم اپنے تربیت کے لیے کرتے ہیں. فیس اگر بالفرض اگر کھینچ رہے تو میرا آ بھی جائے گا نا کسی کو, اگر تو اس کو ہم وائٹ کر دیں گے اگر کسی کو دکھانی ہے. اور اول تو وہ تصویریں رہتی نہیں, وہ ٹیمپریری ہوتی ہیں, دیکھی ختم کر کے بند کر دی. تو کوشش کر کے ان چیزوں کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک قسم کی خود نمائی بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی نظروں میں ہمیں بڑا کر دے اور لوگوں کی نظروں میں اور ہمیں ہماری نظروں میں چھوٹا کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بچپن سے بچوں کو اس چیز سے بچائیں, پھر اسی کے ساتھ میوزک آ جاتا ہے, تصویریں ہوتی ہیں. یہ جو آج ہمارے بچے اتنے ہائپر ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ارد گرد تو شیطان ناچ رہے ہیں, کہیں میوزک ہے تو کہیں تصویریں ہیں تو کہیں ان کے کھانے میں کچھ ایسی چیزیں اللہ معاف کرے آ جاتی ہوں گی جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو, جتنا بچاؤ گے اللہ تعالیٰ اتنا فائدہ دے گا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات یہ کہی ہے وہ جھوٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بات غلط ہو نہیں سکتی. کہ قلیل من عبادی الشکور, بہت تھوڑے لوگ ہیں میری بندوں میں جو شکر گزار ہیں. ایک کسی کا لیکچر سنا تھا انگلش میں اس پہ, تو انہوں نے اس پہ واقعہ سنایا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس آیت کو سن کر تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اللہ خود شکوہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں. تو انہوں نے واقعہ کچھ ایسے سنایا تھا کہ ایک شخص تھے تو وہ صحرا میں کسی سے الگ ہو گئے, اور اپنے قافلے سے جب بچھڑے تو خیر ڈھونڈتے ڈھانڈتے گئے تو ان کو ایک کوٹری جو تھی اس کے پاس سے آواز آ رہی تھی, ایک بندہ پڑھ رہا تھا, الحمد للہ الذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تبدیلا. آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے یہ وہی دعا ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو پڑھو. خیر کہتے ہیں میں نے نوک کیا تو میں نے پوچھا میں اندر آؤں, انہوں نے آواز دی کہ آ جاؤ. کہتے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہے, بالکل ہینڈی کیپ, جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں ہے, صرف زبان کام کر رہی ہے اور بیٹھا ہے اور زبان پہ یہ کلمات ہیں. خیر میں نے کہا کہ بابا جی آپ یہ کس بات پہ اللہ کا شکر کر رہے تھے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے تو جسم کا کوئی عضو سلامت نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہت ساری دنیا سے اچھا رکھا. پھر اس نے کہا کہ کیا اللہ نے مجھے انسان نہیں بنایا, کئی جانور ہیں؟ کیا اللہ نے مجھے مسلمان نہیں بنایا, کئی لوگ کفر پہ ہیں؟ کیا اللہ نے مجھے اپنا شکر کرنے والا نہیں بنایا, یہ نعمت نہیں ہے؟ اور اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میں تو ان نعمتوں پہ بھی شکر کر رہا ہوں. کہا بابا جی آپ کی کہانی کیا, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی کھاتا پیتا تھا, میرا بیٹا بہو پوتا اور سب لوگ تھے. قصہ مختصر یہ کہ ایک حادثہ ہوا, میری بہو بھی مر گئی, میرا بیٹا بھی مر گیا, اور چھوٹا پوتا میرا جو 7-8 سال کا بچہ ہے وہ, اور میں اس طرح ہینڈی کیپ شکل میں رہ گیا ہوں. اب وہ بچہ باہر جاتا ہے کچھ جمع کر کرا کے لاتا ہے تو وہ بھی کھا لیتا ہے, میں بھی کھاتا ہوں. تو میں تمہیں اپنی کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم نے میری مدد کرنی ہے. کہا میں آپ کی کیا مدد کروں؟ کہا کہ وہ کل سے آیا نہیں ہے واپس بچہ, وہ گیا تھا تو آیا نہیں, اب میں جا نہیں سکتا, تم جاؤ میرے اس پوتے کو ڈھونڈ کے لاؤ. کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. خیر صحرا تھا, کہتے میں باہر نکلا, مجھے چاروں طرف کچھ دکھا نہیں, دور سے مجھے کہیں گدھ دکھے وہ جو لاشوں کو کھاتے ہیں. کہتے لاشوری طور پہ میرے قدم ادھر گئے تو وہاں دیکھا تو صحرا میں ایک اسی عمر کے 8-9 سال کے بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور گدھ اس کو کھا رہے ہیں. سمجھ گئے کہ یہ بچہ انہیں کا ہی ہوگا پوتا. اب واپس آئیں تو کیا کہوں, کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ بتاؤں گا. کبھی کہتے میں نے سوچا کچھ نہ کہوں جھوٹ بول دوں. خیر بات واپس آ کے کی بابا جی سے کہ یہ بتائیں کہ اللہ کو آپ سے زیادہ پیار ہے یا حضرت یعقوب سے؟ آف کورس یعقوب سے زیادہ پیار ہے, نبیوں کی باتیں کی, ان کی دل کو جمایا اور کہہ دیا کہ بابا پھر اپنے پوتے پہ صبر کر لو, اب وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اب اس بات کو سن کر پھر اس نے الحمدللہ کہا, چیخ ماری, اور کہتے ہیں کہ وہ بابا گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. انہوں نے ان کا مل کے کفن دفن جو بھی کیا, ان کو نہلایا دھلایا دفن کیا. رات کو کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بابا بالکل ٹھیک حال میں ہے, اس کی حالت بڑی اچھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بابا جی صبح تو آپ ہینڈی کیپ تھے, اندھے تھے, یہ تھا وہ تھا, آپ کی یہ حالت کیسی بدل گئی؟ تو اس پہ انہوں نے قرآن کی وہ ایک آیت ہے کہ جزام بما صبر تم فنعم عقب الدار, غالباً ایسے سورہ رعد یہود کی آیت ہے, کہ اللہ کہتا ہے یہ میں صبر والوں کو ان کا بدلہ دیتا ہوں صبر پہ. تو قلیل من عبادی الشکور, خود سے پوچھئے, جب کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے کوئی دکھ آیا ہی نہیں تو مطلب یہ کیا ہے کہ دکھ لگا ہی نہیں, चुभा ही नहीं, महसूस नहीं हुआ। आप कहते सर्दी सर्दी, कोई सर्दी का दुख नहीं है। आप कहते गर्मी गर्मी, कोई गर्मी का दुख नहीं। आप कहते भूख भूख, भूख का कोई दुख नहीं है। जिंदगी को इस तरह का बना लीजिए कि अल्लाह का फैसला आपका फैसला बन जाए तो दुख नहीं होगा। शुक्र है ही अल्लाह के फैसलों को दिल की गहराई से मानने का नाम। खुशी और गम जिस मुकाम पे जाकर एक हो जाती है ना, मेरी नजर में ये शुक्र का मुकाम है। शुक्र और सब्र एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। सब्र है तो शुक्र में ढलेगा वक्त आने पे, और अगर आप में शुक्र है तो सब्र में ढल जाएगा। जो साबिर है ना वही शाकिर है, जो साबिर नहीं है वो शाकिर नहीं। बात कहते नहीं फलां बड़ा साबिर है, शाकिर नहीं, झूठ है ये। ये बिल्कुल सी सॉ है। आपकी जिंदगी में आप ऊपर जा रहे हैं तो शुक्र है, जिंदगी में कभी डाउनफॉल आए, नुकसान हो गए, तकलीफें आ गई, नीचे रोते नहीं है, हाल दुहाल नहीं मचाते। कितनी बातें की हमने अभी सुबह से शुक्र की। यानी शुक्र है ही अल्लाह के उन फैसलों को कबूल करने का नाम जिनको आप पसंद नहीं करते। हम क्या पसंद करते हैं? हमारी बहुत सारी औलाद हो, ठीक है। दूसरी चीज हम पसंद करते हैं, हमारे पास बहुत सारा माल हो। तीसरी चीज हम पसंद करते हैं, लोग हमसे बहुत प्यार करें। चौथी चीज हम पसंद करते हैं, हमारा घर बहुत बड़ा हो। लिखते जाए, अगर आप अपने अंदर को खोल के कागज पे लिखेंगे ना, मैं क्या क्या चाहती हूँ, ये सब लिख रहे हैं। अच्छा 10 चीजें लिख ली, मिसाल है, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, जो आपने चाहा वो आपको मिला। फाइन न लको मा साल तुम, कुरान में अल्लाह ने बनी इसराइल को कहा, मांगते हो मनोसलवा तो ले लो, जो मांगते हो वो सब मिल गया। इसके बावजूद भी अगर आप शाकिर नहीं है तो आप खुश नहीं रहेंगे। खूब से खूब तर की तलाश। आप कहते हैं कि मियाँ की तनख्वाह 100 पाउंड है, कभी 1000 में ढल जाए ना कितना मजा आए। अल्लाह करता है 1000 बनते, 1000 बन गया, कहते बहुत अच्छे। कभी ये 10,000 हो जाए ना फिर तो मौजे ही मौजे, 10,000 भी अल्लाह कर देता है। आप जाके 10,000 वाले से पूछिए सुनाए, खुश हो ना आप, कहते नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन आपको नहीं पता एक्सपेंसेस बढ़े हैं, खर्चे बहुत हैं। कभी 50,000 तनख्वाह दे, मैं कह सकती हूँ ये गुब्बारे में हवा की तरह फलता जाएगा। आपकी जेब में 10,000 रुपया पड़ा है और आप कहते हैं है ही कुछ नहीं, और एक शुक्र वाला बंदा वो कहता है 10 भी हैं ये भी क्या करने हैं, दे दो किसी को, मेरे काम मुझे जरूरत पड़ेगी अल्लाह मुझे फिर दे देगा। यानी इतना बिग डिफरेंस है। मैं कहती हूँ कि नमाजें, रोजे, हज, जकात, इस जज्बे से पता चलता है हमारा हाल दोहाली। हम छोटी सी तकलीफ में मरने ही लग जाते हैं, नहीं इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा, उसका है जो उसने लिया दिया, जो दे रहा है वो शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में शुक्र है। नबी सल्लम की दुआएं थी, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल वाऊज़ु बिका मिन हाल अहलिन नार। आप इस दुआ को अपने दिल की तख्तियों पे लिख लें कि अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है सिवाय एक चीज के, जो तू मेरे साथ करेगा उस पर तेरा शुक्र शुक्र, मैं खुश हूं लेकिन मैं जहन्नुम में नहीं जाना चाहती, इस पे नहीं मैं शुक्र करूंगी, चले आप आग में बेहतर। आउज़ु बिल्लाहि मिन हाली अहले नार, अहले नार वाला मेरा हाल ना हो कि दुनिया में मैं वो काम करने लग जाऊं जिससे तुझे नाराज करूं। तो दौलतमंद बनना चाहते हैं ना तो शुक्र मांगिए, खुश रहना चाहते हैं ना तो शुक्र मांगिए, कॉन्टेंट है शुक्र मांगिए। अगर आप अपने आप को चाहते हैं आप यंग दिखें, एवर न्यू एवर ग्रीन, शुक्र सीखें, क्योंकि जो मिला है वो हमारी औकात नहीं है, हमारा हक नहीं। अल्लाह की कसम दुनिया में एक नेमत भी जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये हमारा हक नहीं है, ये अल्लाह की अता है। हम डिजर्व करते हैं कि हम ये खाने खाएं जो खा के बैठते हैं, ये पहने जो पहनते हैं, जिन गाड़ियों पर बैठ के आते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं, जिधर जाना है, हमारा हाल तो कोई देखे। नमाज भी रो दो के पढ़ लें तो बड़ा एहसान है कि नमाजें 5 तो पढ़ी है ना। दिल नहीं अगर आपका गनी तो कुछ नहीं। हदीस में तो लैसल गिना बिल माल, माल के साथ गिना नहीं होता। अल गिना क्या है? बिल्कुल दिल की कैफियत का नाम है। दिल बादशाह तो सब बादशाह। वो भी लोग देखे होंगे आपने 5,000 तनख्वाह मर्दों की महीने की, उसमें बेचारे खुश हैं, कहते नहीं 5,000 में 200 बच ही जाता है, मैं उसमें से भी जाके मस्जिद में डाली आती हूँ चंदा। और आपने वो भी देखे होंगे 5 लाख वाले, वो कहते हालात कोई नहीं, मर गए डूब गए, सारा पैसा चला गया, कारोबार खराब है, बच्चों की इतनी फीसें हैं, वो 5 लाख महीने की खाते कमाते होंगे, वो कहते हैं कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसे ही अब कौमों के हालात अल्लाह ताला हमें आगे सुनाएगा।